हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 35 36 37 38 39 एंड 40। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्म्यतमिदम् तत्राग्रहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। प्रजेवसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां చదుకూలచోరం శ్రీరాధికాయ హృదయస్య చోరం చోరాగ్యగణ్యం పురుషం నమామి శ్రీకృష్ణశ్యామం మనసా స్మరామి వంశీ విభూషితకరా నవనీరధాభా పీతాంబరధరుణబింబఫల ధరోష్ఠా పూర్ణేంద్రసుందరముఖాత్ అరవిందనేత్రాత్ కృష్ణాత్ పరం కిమపి తత్వ అహం న జాని. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతం గదాధారం శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. గ్రంథ శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ కీ జయ హో. ప్రథమ స్కంద 13వ అధ్యాయ జిస్కా శీర్షక్ హై ధృతరాష్ట్ర ద్వారా గృహ త్యాగ. తో హమ్నే సునా జబ్ విదుర్ జీ నే అప్నా ఉపదేశ ధృతరాష్ట్ర కో దియా తో ధృతరాష్ట్ర సంపూర్ణ రాజ్య ఔర్ సబ్ సంబంధియో కా పరిత్యాగ కర్కే హిమాలయ కీ ఓర్ చలే గయే. జబ్ యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ నే సుబహ దేఖా కి ఉన్కే తాజ్ శ్రీ ఉన్కే బడే పితాజీ ఔర్ ఉన్కే కాకా శ్రీ విదుర్ తథా ఉన్కీ మాతా శ్రీ గాంధారీ రాజమహల్ మే నహీ హై తో బహుత్ వ్యాకుల్ హుయే. వో బహుత్ దుఃఖీ హోకర్ ఇధర్ ఉధర్ ఉన్కో ఢూండ్నే లగే కి వో పతా నహీ ముజ్సే రుష్ట్ హో గయే హై, క్యూ చలే గయే హై, కహీ ఉన్హోనే ఆత్మహత్యా తో నహీ కర్ లీ గంగా మే కూద్ కర్, యా ఫిర్ మేరే అపరాధ్ కో దేఖ్ కర్ వో బహుత్ జ్యాదా దుఃఖీ హై ఔర్ వో మేరే సాథ్ నహీ రహనా చాహతే, ఇస్లియే వో ముజే ఛోడ్ కర్ చలే గయే. బహుత్ జ్యాదా దుఃఖీ హో గయే, వో హర్ జగహ్ పర్ ఉన్కో ఢూండ్ రహే థే పర్ వో కహీ నహీ మిలే. తో ఉన్హోనే సంజయ్ కో దేఖా, ఉన్హోనే సోచా कि धृतराष्ट्र जी कोई बात भी संजय से पूछे बगैर नहीं करते, कोई भी बात उनको काम करना होता है तो संजय से ओपिनियन अवश्य लेते हैं. तो संजय से पूछा कि क्या आपको पता है कि मेरे ताज श्री कहाँ है, माता गांधारी कहाँ है? मैंने उनको पूरे राजमहल में ढूंढा परंतु वो मुझे नहीं मिल रहे हैं. वे तो सदैव हमारे शुभ चिंतक है. जब से मेरे पिताश्री का देहांत हुआ, मेरे पिताश्री तो मुझे बचपन में ही अकेला छोड़कर चले गए. जब मैं छोटा था, हम सब छोटे छोटे बालक थे, तभी से मेरे इन्हीं बड़े चाचाओं ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें समस्त विपत्तियों से कष्टों से बचाया. आज वे यहाँ पर नहीं है तो मुझे छोड़कर वो कहाँ चले गए? वो केवल युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र जी के गुणों को याद कर रहे थे. युधिष्ठिर महाराज डार्क साइड को टच भी नहीं कर रहे थे कि उन्होंने मेरे साथ कितना विश्वासघात किया, मेरे मुझे कितना कष्ट देने की, मेरे मुझे और मेरे भाइयों को, मेरी माता को, मेरी पत्नी को हर प्रकार से उन्होंने संकट में डालने का प्रयत्न किया, ये सब याद नहीं कर रहे थे. लेकिन संजय से बार बार उनके गुणगान करके उनसे पूछ रहे थे. जब संजय ने सुना तो उसे वो पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वो भी जब सुबह उठते थे तो उन्होंने भी धृतराष्ट्र को हर जगह पे ढूंढा था, वो नहीं मिल रहे थे. तो संजय पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी थे. और जब युधिष्ठिर महाराज ने संजय से पूछा तो बहुत ज्यादा दुखी होने के कारण उनसे आवाज ही नहीं निकल रही थी, उनके गले से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे. सूत गोस्वामी आज हमें बता रहे हैं कि संजय की क्या स्थिति थी उस समय. सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहाति पित्ति न प्रत्याहाति पीडितम् कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः कृपया स्नेह वैक्लव्य। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि संजय उस समय बहुत ज्यादा स्नेह वैक्लव्यात मतलब अत्यधिक स्नेह के कारण अपना मानसिक संतुलन भी बरकरार नहीं रख पा रहे थे, मतलब वो सही तरह से बात नहीं कर पा रहे थे। विरह कर्षितः जो संजय थे, सूत यानी संजय, विरह कर्षितः मतलब वियोग से बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज से संजय बहुत स्नेह करते थे। वो उनके मित्र भी थे, उनके सारथी भी थे, उनके सचिव थे, हर बात वो उनको शेयर कर रहे थे। तो फिर आज जब धृतराष्ट्र महाराज उनको बताए बगैर चले गए तो वो बहुत ज्यादा दुखी थे। आत्मा ईश्वरम यानी अपने स्वामी, वो उनको अपना स्वामी भी मानते थे और अपना सुहृद भी मानते थे। संजय से भी धृतराष्ट्र जी बहुत प्यार करते थे। तो अचक्षणाम, अचक्षणाम मतलब जब उन्होंने अपने नेत्रों से उन्हें देखा नहीं, न प्रत्याहार, तो वो सही तरह से उत्तर नहीं दे पाए। अति पीड़ित, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी थे, तो बहुत ज्यादा दुखी होने के कारण उनकी वाणी से सही शब्द नहीं निकल रहे थे। अनुवाद, सूत गोस्वामी ने कहा, दया तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर ना दे सके। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी हमें संजय के विषय में बता रहे हैं कि संजय जो था वो दीर्घ काल तक महाराजा धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे थे, अतएव उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने देखा था धृतराष्ट्र ने पूरा जीवन क्या किया, अतः जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र बिना बताए घर से चले गए हैं तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत दयालु थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे, मतलब उसके सारे पुत्र भी वहां पर हार गए थे। वो अपना सारा धन, अपना राज्य, सब कुछ कुरुक्षेत्र के युद्ध रूपी जुए में हार चुके थे। और अंत में आज क्या हुआ था, राजा तथा रानी को निराश होकर घर छोड़ना पड़ा। उसे पता नहीं था संजय को कि हुआ क्या था, लेकिन वो अपनी तरफ से ऐसा सोच रहे थे। शिला प्रभुपाद जी बोल रहे उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपनी विधि से किया था, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जाग चुकी है और वे गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए घर छोड़कर चलेंगे। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि जब तक किसी को यह जीवन त्याग कर कोई श्रेष्ठ जीवन की आशा नहीं होती है, तब तक उसे सन्यास में कोई आनंद नहीं आएगा। तब तक वो वैरागी अगर जीवन गुजार लेता है, घर बार छोड़कर चला भी जाता है, तो भी उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, तो फिर वापस उसी घर गृहस्थी की ओर उसको आकर्षण उत्पन्न होगा। लेकिन अगर किसी को यह विश्वास हो जाए कि जब मैं इस घर गृहस्थी, इस राज्य, धन दौलत, सुख सुविधाओं का परित्याग करूंगा तो मुझे श्रेष्ठतर जीवन प्राप्त होगा, मुझे मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होगा, जब सामने उसको अपना सुनहरी भविष्य दिखता है, तभी उसको संन्यास में आनंद आता है। फिर सुख गोस्वामी बता रहे हैं कि उसके बाद, क्योंकि संजय बहुत ज्यादा दुखी था, उसका मन बहुत ज्यादा विचलित था और बुद्धि भी ठीक नहीं थी, वो मानसिक संतुलन खो बैठे थे, लेकिन फिर जब युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने विमृज्याशूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोपादा वनुस्मरन्। विमृज्याशूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभुपादावनुस्मरन्। विमृज्य अश्रुणि, विमृज्य मतलब पहुंचा, अश्रुणि मतलब आंखों से आंसुओं को, उनके नेत्रों से बहुत बहुत आंसू गिर रहे थे, और पाणिभ्याम यानी पाणिभ्याम मतलब अपने दोनों हाथों से, आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे, धृतराष्ट्र नहीं मिल रहे थे तो वो ज्यादा दुखी हो रहे थे, और अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे। और विष्टभ्यात्मान आत्मना यानी विष्टभ्या मतलब स्थित किया, आत्मान मतलब मन को, आत्मान मना बुद्धि से, अपने मन को अपनी बुद्धि से संतुष्ट किया, स्थिर किया, अपने मन को बोला कि अभी क्योंकि महाराज युधिष्ठिर मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे उनको उत्तर देना है, तो अपने मन की स्थिति को थोड़ा सा सही किया, क्योंकि वो जानते थे अजात शत्रु, क्योंकि वो जानते थे कि धृतराष्ट्र महाराज चाहे जैसे भी थे, युधिष्ठिर महाराज ने उनको कभी अपना शत्रु नहीं माना, वो सदैव अपने पिताश्री की तरह उनका आदर करते थे। तो इस अजात शत्रु प्रत्युचे, प्रत्युचे मतलब फिर उनको तो उत्तर देना चाहिए ना, इन्होंने तो इनके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया, तो प्रत्युचे यानी उत्तर देने लगे। कैसे, उन्होंने किस तरह से उत्तर दिया, प्रभु पादा वनुस्मरण। यहाँ पर संजय के जो गुरु भक्ति है ना, अपने स्वामी भक्ति को दिखाया जा रहा है कि वो अपने स्वामी, अपने प्रभु धृतराष्ट्र के चिंतन, पादावनुस्मरण यानी उनके चरणों का चिंतन करके वो इस तरह से उत्तर देने लगे। क्या उत्तर देंगे वो आगे देखते हैं हम, अनुवाद देखिए। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। संजय उवाच, नाहं वेद व्यवसितम् पित्रोर्वह कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। नाहं वेद व्यवसितम् पित्रोर्वह कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। नाहं वेद, नाहं मतलब संजय ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, वेद मतलब मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो खुद भी पता नहीं है। व्यवसितम उनका क्या संकल्प था, वो गए हैं ये तो मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है, परंतु उनके संकल्प का, उनके निर्णय का मुझे पता नहीं है, वो कहाँ गए ये मुझे पता नहीं, क्यों गए वो मुझे पता नहीं, क्या करने के लिए गए हैं वो मुझे पता नहीं। पित्रोर्वा, पित्रोर्वा मतलब आपके दोनों पिताश्री, आपके ताजश्री महाराज धृतराष्ट्र और काकाश्री विदुर, वो दोनों नहीं है ये तो मैं जानता हूँ, परंतु उनके संकल्प का, उनके व्यवस्थितम का मुझे कुछ पता नहीं है। कुल नंदना, हे कुरुवंश के आनंद देने, नंदन का मतलब होता है आनंद देने वाली संतान, आपने तो सदैव अपने गुरु के समस्त वंश जितने भी आपके पितर हैं उन सबको आनंद प्रदान किया है, परंतु यह धृतराष्ट्र महाराज पता नहीं क्या सोचकर आपको छोड़कर चले गए हैं। गांधार्याम व महाबा, और गांधारी के विषय में भी, हे महाबाहु, हे महान राजा, मुझे कुछ पता नहीं, ना हम वेद, मुझे किसी के विषय में कुछ पता नहीं है। मुशित का मतलब है मुझे धोखा दिया उन्होंने, मुझे ठगा। अस्मि, अस्मि माने मैं उनके द्वारा ठगा गया हूँ। महात्मा भी, उन महात्माओं द्वारा, वो महात्मा है वो सदैव मुझसे ऐसा व्यवहार करते थे, ऐसा लगता था मुझे कि वो अपनी हर एक बात मुझे बताते हैं, मुझसे हर चीज अपना समझकर शेयर करते हैं, परंतु आज वो धोखा करके चले गए। मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझसे ओपिनियन भी नहीं लिया कि संजय हम जा रहे हैं, मुझे पता कि नहीं गए, मुझे धोखा दे के चले गए हैं। अनुवाद। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों तावों तथा गांधारी के संकल्प के विषय में कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तुठक आ गया। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह जानकर अन्यों को आश्चर्य होगा कि महात्मा धोखा देते हैं। अब यहाँ पर बता रहे, मुशी तो उसमें महात्मा भी, वो हैं तो महात्मा परंतु मुझे ठग दिए। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते, क्या महात्मा किसी को धोखा दे सकते हैं? श्री प्रभुपाद जी बोलते, हाँ, किंतु यह तथ्य है कि महत कार्य के लिए महात्मा अन्यों को ठगते हैं। कार्य यदि बहुत ज्यादा महान है तो फिर धोखा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब यहाँ पर बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि जब कोई गुरु आज्ञा का पालन करता है और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पाने के लिए कोई कार्य करता है तो बहुत बहुत लोगों से राय मशवरा लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब गुरु आज्ञा पाकर निकल जाना चाहिए। और एक और बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पर भगवत प्राप्ति संभव है। भगवत प्राप्ति हर जगह पर सुलभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप भौतिक लोगों के साथ और भौतिक भोगों का भोग करते हुए सरलता से कृष्ण प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण को प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे यदि आप एरोप्लेन में जाना चाहते हो किधर, तो केवल एरोप्लेन का टिकट लेना क्या पर्याप्त है? टिकट ले लिया तो क्या घर से आकर आपको एरोप्लेन उठाकर लेकर जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर ही आपको एरोप्लेन मिलेगा जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा ले। उसी प्रकार इस संसार से भी यदि आप भक्त बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी रहो और कैसा भी आपका व्यवहार हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से संपूर्ण आसक्ति समाप्त करनी होगी। शीला प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि एक चॉकलेट के अंदर भी आपकी आसक्ति रह गई तो धाम जाना कठिन हो जाएगा। तो फिर ऐसी जगह का चयन करना पड़ेगा जहाँ पर कि हमारी आसक्ति कृष्ण चरणों के अतिरिक्त और कहीं पर भी ना हो। तो यहाँ शीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो महात्मा होते हैं वो महान कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। तो यहाँ पर इस संसार में यदि हमें भगवत धाम जाना है तो भक्त बनके ऐसी जगह का चयन करना है जहाँ से भगवान का विमान आकर हमें ले जाए। और ऐसा एयरपोर्ट सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ एयरपोर्ट है वृंदावन, जो सीधा गोलोक वृंदावन धाम लेकर जाता है। तो इस विषय में यानी वृंदावन जाने के लिए या ऐसे शुभ स्थान पर जाने के लिए किसी से ज्यादा ओपिनियन नहीं लेना चाहिए, किसी से ज्यादा पूछना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम बूढ़े हो जाएंगे और हम पूछेंगे अपने बच्चों से कि बेटा अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ यहाँ संसार में नहीं, तो कोई जाने देगा क्या? बोलेंगे नहीं नहीं पिताश्री, अभी आप इतने बूढ़े हो गए हो, सब लोग है ना रोना शुरू कर देंगे कि नहीं आप कौन वहां पर ख्याल रखेगा, इतनी ठंड का मौसम होगा, बीमार हो जाओगे, कौन सेवा करेगा, कौन है ना आपको कुछ बना के देगा, आप खाओगे क्या वहां पर, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। तो ये सब आपने देखा, मेरे कर्तव्य पूरे हुए तो भौतिक आसक्ति को छोड़कर आपको निकलना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष सत्य बोलें, यह भी एक महान उद्देश्य के लिए, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो असत्य बोल रहे थे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई थी लेकिन भगवान ने कहा युधिष्ठिर तुम बोलो। युधिष्ठिर ने कहा मैं तो असत्य कभी बोलता नहीं हूँ। तो भीम को बोला कि तुम है ना उस हाथी को मार डालो, उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अभी अश्वत्थामा तो फिर भी वो नहीं मरा है ना, तो भी अगर द्रोणाचार्य ने मुझसे पूछा तो मैं क्या बोलूंगा, तो तुम उसको बोल देना कि भाई अश्वत्थामा मरा गया, मुझे नहीं पता कि हाथी था या इंसान था, मुझे नहीं खबर। तो फिर जब द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, क्योंकि द्रोणाचार्य को जब भीम ने कहा कि अश्वत्थामा मारे गए, तो फिर द्रोणाचार्य उसकी बात को नहीं मान रहे थे, क्योंकि भीम तो झूठ भी बोल सकता है लेकिन युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। द्रोणाचार्य गए युधिष्ठिर के पास और पूछा कि आप तो धर्मराज हो, आप बताओ कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी था या मनुष्य मुझे नहीं पता, वो सिलों में बोल दिया। लेकिन द्रोणाचार्य तो इतना ही सुनकर घायल हो गए, मूर्छित हो गए कि अश्वत्थामा मारा गया। बहरहाल यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह भी एक महान उद्देश्य था, क्योंकि कृष्ण ऐसे चाहते थे, कृष्ण चाहते थे, क्योंकि कृष्ण यहाँ से अधर्म का सर्वनाश करना चाहते थे, तो कृष्ण जैसे भी करते हैं उसमें किसी भी पक्ष का अहित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज के ऐसे कहने से द्रोणाचार्य का अहित हुआ, नहीं, द्रोणाचार्य का भी हित हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पर द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी कृष्ण के समक्ष, इससे बड़ा और क्या फायदा मिल सकता है, इससे बड़ा मनुष्य जीवन का क्या लाभ हो सकता है कि कृष्ण सामने हो और आपकी मृत्यु हो जाए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतः यह महान उद्देश्य था, जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि है कि वह अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक भक्त को ये नहीं देखना है कि संसार उससे प्रसन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाकी मेरे शरीर को उससे प्रसन्नता हो रही है या नहीं हो रही है, मेरी इंद्रियां संतुष्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसका चरम लक्ष्य, उसकी एकमात्र कसौटी क्या है कि मैं भगवान को प्रसन्न कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जीवन की चरम सिद्धि यही है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। गीता कहती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता बता दी, उसके बाद अंतिम निर्णय दिया, चैप्टर 18 वर्स नंबर 46 में भगवान कहते हैं, यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततम् स्वकर्मण्यभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवा। यत प्रवृत्ति भूतानां, मतलब वह भगवान जिससे सारी जीवों का उद्गम हुआ है, येन सर्वम इदम ततम, येन मतलब जो भगवान सर्वम इदम ततम, यह समस्त संसार में व्याप्त है, संपूर्ण वस्तुओं का, संपूर्ण जीवों का उद्गम है और सारे संसार में व्याप्त है, तो जीव को क्या करना चाहिए, स्वकर्मण तमभ्यर्च, अपना कार्य तो करते रहना चाहिए परंतु साथ में उनकी पूजा भी करनी चाहिए। वह भगवान जो संपूर्ण जीवों का स्वामी है, संपूर्ण वस्तुओं का उद्गम है, उनकी पूजा करनी चाहिए। सिद्धिम विन्दति मानवा, यही मनुष्य जीवन की सिद्धि है कि हम अपने कार्यों को करते रहें। कोई लोग बोलते हैं, हम अपने कार्यों को तो अच्छे तरह से कर रहे हैं, फिर भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन भगवद गीता कहती है, अगर अपने कार्यों को करते हुए तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है, फिजूल है। और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भागवत और भगवत गीता दोनों का यह निर्णय है। तो श्रीमद् भागवतम में 1.2.13 में बताया जाता है, अतः पुंविर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण। अतः पुंविर्द्विज श्रेष्ठ, सूत गोस्वामी कहते हैं, हे सारे ऋषियों, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, वर्णाश्रम विभागश, जितने भी आप चाहे किसी भी वर्ण में हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, आप ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, ग्रस्त हो या सन्यासी हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो जो भी हो चाहे आप, सुनिष्ठतस्य धर्मस्य, अपने कर्म को बहुत ही सुंदर तरीके से अपने धर्म का पालन करते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, अपने धर्म का पालन करते हो उससे पता कैसे चलेगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, संसिद्धिम हरितोषणा, इसका पता तब चलेगा, उसकी सिद्धि क्या है कि आपसे, आपके कार्य से भगवान प्रसन्न होने चाहिए। यदि आप अपने धर्म, अपने वर्ण आश्रम का अच्छे से पालन कर रहे हो लेकिन कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहे हो, तो समझो कि आप क्या कर रहे हो, श्रम एव ही केवलम, केवल गधे की तरह बोझ उठा रहे हो, केवल बेल, कोलों के बेल की तरह आप घूम रहे हो, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। यदि आपके जीवन से भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो आपके जीने का कोई लाभ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए, यही गीता और भागवतम का निर्णय है। गांधारी समय धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया था, बताया नहीं था किसी ने भी संजय को, यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था, वो सदैव होता था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे। धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह से के संतरी को धोखा दिया था। सनातन गोस्वामी जेल में बंद थे, जैसे हमें पता है कि उनको राजा ने कैद कर दिया था, क्योंकि वो पहले राजा के मंत्री थे लेकिन बाद में वो भक्ति करना शुरू हो गए तो राजा ने उसको कैद कर दिया था, लेकिन वो किसी को बताए बगैर सबको धोखा देकर चले गए, तभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज जाते थे चैतन्य महाप्रभु के पास, जाने का बहुत प्रयत्न करते थे मगर महाप्रभु उन्हें नहीं स्वीकार करते थे। एक बार उनके पुरोहित ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। तो वो तीर्थों में उनको घुमाते घुमाते खुद ही घूम गए और निकल गए महाप्रभु की शरण के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने भी तो ऐसा ही किया, और श्रीमद् भागवतम की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ दिया था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं पहुंचती। ये सबसे महान उत्तम कार्य है। ये मत समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए निकल रहे हैं तो किसी की भी हानि होगी। अगर कोई पुत्र निकल रहा है, कोई पति निकल रहा है, कोई पत्नी अपने पति के साथ निकल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर वो उसका उद्देश्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता है तो वो जो पीछे जिसको छोड़कर आए हैं उनका पूरा का पूरा जिम्मा, पूरा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के पास है। वो भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। एक व्यक्ति वाला किसी का कितना साथ दे सकता है, परंतु भगवान यदि चाहे, जिसको भगवान जिसका संरक्षण करे उसको भला क्या हानि पहुंच सकती है। तो यदि उद्देश्य बहुत उत्तम होता है, बहुत उत्तम मतलब भगवत सेवा का होता है, भगवान को प्रसन्न करने का होता है, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उससे किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती, किसी को भी उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज तो अपने ताजश्री को ढूंढ रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, संजय ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया, तो इधर उधर ढूंढा। बाहर अब राजमहल था तो वहां पर कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे वहां बाहर, तो बाहर गए, सबसे पूछ रहे थे कि आप लोगों ने तो रात को देखा होगा ना, आप लोग तो पहरा देते हो, यहाँ पर जाग रहे थे। तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने बोला, हाँ हमने देखा था महाराजा, महारानी और विदुर जी जा रहे थे, लेकिन हमने उनसे पूछा थोड़ी, अब राजा जा रहे हैं विदुर जी के साथ, वो थोड़ी पूछेंगे सिक्योरिटी गार्ड कि आप लोग किधर गए हो। तो वो उनको जाना था दक्षिण की ओर, लेकिन वो पहले उत्तर की ओर से गए और इस तरह से घूम के ताकि कोई उनको खोज ना सके, तो वो इसी तरह से चले गए। वास्तव में ऐसा त्याग होता था पहले, जो राजा लोग होते थे ना, जो राज्य ऋषि होते थे, वो भी इसी तरह त्याग करते थे, अपने पुत्र को राज्य दे देते थे, फिर वो बताए बगैर निकल जाते थे, किसी को भी नहीं बताते थे कि मैं किधर, क्योंकि अभी राजा हैं उनके पुत्र, पहले तो सत्यवादी होते थे सब, उनके पुत्र भी बहुत ज्यादा महान होते थे, तो आज तो भले सोचते होंगे माता पिता बूढ़े हो जाएं, चले जाएं किसी वन में तो और भी अच्छे, हम लोग आसानी से रहेंगे आजादी के साथ। लेकिन पहले तो पुत्र भी बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, सुपुत्र होते थे, तो लेकिन वो राजा भी नहीं बताते थे अपने पुत्रों को कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस उसी राज्य में जहां पर उनके पुत्र राजा होते थे, जहां के राजा वो पहले होते थे, वहीं पर किसी ना वन में जाकर किसी कोई छोटी सी कुटिया बनाकर भगवत भक्ति करते थे। कोई सुविधा नहीं होती थी खाने पीने की, संरक्षण की, मौसम की कोई भी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वहां पर रहते थे। वो उनका जो उद्देश्य होता था वो बहुत ज्यादा महान होता था, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे, इसीलिए बहुत ज्यादा संतुष्ट रहते थे। कहीं भी बैठे होते थे, भजन करते थे, और ऐसे करते करते एक दिन मर जाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भौतिक वस्तुओं का यदि हमने त्याग कर लिया तो कोई उनको उसके लिए कोई दुख नहीं होता था। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा सुख, सब कुछ छोड़कर, सुविधाओं को छोड़कर चले जाते थे। और आज का व्यक्ति छोटा सा घर, एक फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता है। इतनी आसक्ति होती है जीव की अपने घर में, अपने परिवार में। तो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी थे, पूछ रहे थे सबसे। तो अकस्मात वहां पर नारद मुनि आ गए, क्योंकि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के गुरु थे। और जब किसी शिष्य को कोई दुख होता है तो गुरु महाराज आ ही जाते हैं। तो नारद मुनि आए हैं यहाँ पर क्योंकि उनके शिष्य बहुत ज्यादा दुखी हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, अथा जगामा भगवान नारद स तुम्बुरो प्रत्युत्थायाभिवाद्याय सानुजोर्भ्यर्चयन् मुनिम् अथा जगाम भगवान नारद सह तम्भुरो प्रत्युत्थायाभिवाद्याह सानुजोभ्यर्चयन् मुनिम्। अथ मतलब तत्पश्चात। इसके बाद जब वो बहुत ज्यादा दुखी थे, उसके बाद जब उसने सब जगहों पे देख लिया, उसके बाद क्या हुआ? आ जगाम मतलब आ पहुंचे। कौन? भगवान नारद। यहाँ पर भगवान कहा गया नारद मुनि को। भगवान का मतलब है जो उस भगवान की बहुत ही शुद्ध भक्त होते हैं, जो बहुत ही शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी भगवान के समान ही मानना चाहिए। जो बहुत ही उत्तम अधिकारी होते हैं ना, तो वो समझो वो भगवान के बराबर ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, अथ आजागम भगवान नारद सह तम्बुरो। नारद मुनि आए किसके साथ? सह तम्बुरो। तम्बुरो उसको बोलते हैं जो नारद मुनि वीणा बजाते ना, उसको बोलते तम्बुरा, बजाते रहते हैं नारायण नारायण ऐसे। और जिधर भी जाते हैं भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए, तो फिर वहां पर भी आ गए। अकस्मात वहां पर नारद मुनि प्रकट हो गए। तो फिर प्रत्युत्थाया भिवाध्याय, प्रत्युत्थाय मतलब सब अपने अपने आसनों से उठ गए। जब उन्होंने देखा नारद मुनि आए तो जो बैठे हुए थे सब खड़े हो गए। और अभिवाद्य मतलब प्रणाम किया। नारद मुनि अक्सर आते थे, जब भगवान भी होते थे तब उनके दर्शन करने आते थे, युधिष्ठिर महाराज से भी मिलने आते थे कभी। तो जब भी आते थे तो बहुत ही सुंदर पूजा करते थे उनकी, बहुत सारा अभिवादन करते थे उनका, बहुत सुंदर स्वागत किया जाता था। लेकिन अभी क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा दुखी थे, रो रहे थे, उनके माता पिता ताश्री और ताश्री नहीं थे घर पे, तो बहुत ज्यादा दुखी थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ प्रणाम किया। और प्रणाम करके आह कहा स अनुजो, अपने छोटे भाइयों समेत जितने उनके छोटे भाई थे उनके साथ उन्होंने उनको प्रणाम किया, थोड़ा सत्कार किया उनका, और अभ्यचर्यन सच्चे मन से स्वागत किया। मतलब कोई स्वागत की सामग्री नहीं, ऐसा नहीं फूलों की थालियां लेकर आ गए, आरतियां बना के लेकर आ गए, पुष्पमालाएं नहीं, बस सच्चे मन से उनका स्वागत किया मुनि का, मतलब अर्थात नारद मुनि का। अनुवाद, जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो परम शक्तिमान भगवत भक्त श्री नारद अपना तंबूरा लिए वहां पर प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम किया, उनका विधिवत स्वागत किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा।
श्री प्रभुपाद जी कहते हैं देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वस्त भक्त हैं, भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। तो जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, जो बहुत ज्यादा भक्त होते हैं, वे भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा मानते हैं। भक्त देखते हैं जो परम भक्त होते हैं उनको भी भगवान के जितना ही तो सूत गोस्वामी क्योंकि कथा बता रहे हैं इसलिए वो नारद मुनि को भगवान के बराबर बता रहे हैं कि वो भी भगवान ही है हमारे लिए, क्योंकि वह नारद मुनि वह साधन है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने में के लिए विभिन्न प्रकार से सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृतमः भविता अवच न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उस मनुष्य से जो भगवत भगवान की यश का भगवान के पवित्र नाम का गुणगान करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, भगवान कहते हैं कश्चन मे प्रियकृतमः उससे प्यारा मेरा कोई नहीं है और भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अभी तो कोई नहीं है, उससे पहले कोई नहीं था और भविष्य में भी कोई उससे ज्यादा प्यारा मेरा कभी नहीं होगा जो मेरे पवित्र यश का गान करता है, जो अभक्तों को भक्त बनाकर मेरी शरण में लेकर आता है। तो श्री नारद जी जो थे वो उन प्रचारिकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसीलिए वो भगवान के प्रिय विश्वास पात्र भक्त हैं। तो उनके लिए भगवान संबोधन कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनको वो डिजर्व करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी को कहते हैं कि क्योंकि वो भक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते हैं जिससे वे विज्ञ बन सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वास्तविक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त नास्तिक बन जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की असली स्थिति में नहीं है। वास्तविक स्थिति क्या है जीव की? जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। तो जब उसे ये स्थिति याद होगी, वास्तविक स्थिति में होगा, तब तो वो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन जब वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं होता है तब वो क्या करता है? भगवान को प्रसन्न करने की बजाय अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो वह उसकी वास्तविक असली स्थिति नहीं है। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतएव वे भगवान की नजर में प्रिय माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। नारद जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करते हुए अन्यों के लिए अनुकरणीय हैं, जिनके लिए अपनी वीणा लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि हमको उन भक्तों का बहुत सम्मान करना चाहिए, हृदय से आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए जो जिनके द्वारा हमें भगवत संदेश प्राप्त होता है, जो हमें भगवान की ओर भगवान के शब्दों को भगवान के दिव्य ज्ञान को हमें बताते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो हमें हृदय से उनका ऋणी होना चाहिए कि उनके द्वारा हमें भगवत भक्ति भगवान की इस महिमा को भगवान की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ से श्रील प्रभुपाद जी कहते अनुकरणीय है कि हमें उनको युधिष्ठिर महाराज को फॉलो करना चाहिए और भक्तों का बहुत ज्यादा प्रचारकों का बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान तो उन्होंने किया, अब क्योंकि उनकी दशा बहुत ज्यादा दुखद थी तो फौरन से उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए नारद जी को कहा, युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रो भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व स्वगता च तपस्विनी नाहम वेद गतिम। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ पित्रो भगवान क्वगता वेता। पित्रो यानी चाचा, मेरे चाचा है भगवान, हे देवर्षि, हाँ मुझे पता ही नहीं है मेरे चाचा पता नहीं कहाँ चले गए। अम्बा च हतपुत्र, मेरी माता श्री गांधारी जिनके सारे पुत्र मारे गए, वो भी क्वगता च तपस्विनी, वो तपस्विनी है, वो सदैव दुखी रहती थी, अपने पुत्रों के लिए रोती रहती थी। आप बताओ ना वो कहाँ गए हैं, मुझे खबर ही नहीं है। मैं पूरा महल, राजमहल पूरा उनको ढूंढ के आया हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। अनुवाद, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए हैं, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तात्पर्य, महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक, उनको याद रहता था सदैव। युधिष्ठिर महाराज जब भी गांधारी जी को देखते थे, उनको ऐसा लगता था कि ये महातपस्विनी है, वो माता जिन्होंने अपने 100 पुत्रों की हत्या देखी है और फिर भी वो उस व्यक्ति के साथ रहती हैं जिनके कारण उनके 100 पुत्रों का वध हुआ। बहुत बड़ी तपस्विनी है वो, और महाराज युधिष्ठिर सदैव याद रखते थे, सदैव जागरूक रहते थे। तपस्वी समस्त प्रकार के कष्टों को कभी विचलित नहीं होते उनसे, इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक विशेष उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में आदर्श महिला हैं, और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला वेरे ही कोई पाई जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर गांधारी के चरित्र के विषय में बता रहे हैं कि वो एक आदर्श माता थी। अपने उसके पुत्र सदैव गलती करते थे, लेकिन वो कभी भी इसमें उसका साथ नहीं देती थी। उनके पिताश्री उनका साथ देते थे। हम जानते हैं कि जब जुए में दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर महाराज का सारा धन जीत लिया, सब राज्य सब कुछ जीत लिया, पत्नी भी जीत ली, सारे पांडवों को भी जीत लिया, लेकिन जैसे ही गांधारी आई थी तो उनको वापस सारा का सारा लौटा दिया था। तो गांधारी सदैव ये दुर्योधन का पक्ष कभी भी नहीं लेती थी, लेकिन ये तो दुर्योधन को बुद्धि था और उसका पिता धृतराष्ट्र उसका साथ देता था, मामा शकुनी तो यहाँ चलती नहीं थी उनकी, और एक आदर्श पत्नी थी। वो सदैव अपने पति को बताती थी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पांडवों के साथ, पांडवों के पुत्रों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, राज्य का मोह नहीं रखो आप, इस तरह बताती थी, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र कहाँ मानने वाले थे। तो आदर्श, वो एक तपस्वा, उनका पूरा जीवन एक तपस्या था, शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने तपस्या की, एक तपस्विनी का जीवन बिताया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसी तपस्विनी चरित्र वाली महिला हमारे आर्य समाज में बहुत विरले पाई जाती है। आगे युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कहते हैं कि मुझे पता नहीं है वो कहाँ गई है, आप तो त्रिकालदर्शी हो ना, आप तो हर जगह जाते रहते हो, आप आ गए तो समझो अब मेरी समस्या का समाधान अवश्य करोगे। वे कहते हैं, कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शक, अथा भभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शक, अथा भभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तम। कर्णधार इवा पारे, यहाँ पर वे कह रहे हैं ये अपार समुद्र है दुख का, एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें हम अब सब गिर गए हैं, और आप कर्णधार बन के आए हो। कर्णधार का मतलब होता है जैसे एक बहुत बड़ा शिप होता है, उस शिप जैसे नाव होती है ना, नाव को चलाने के लिए ना चप्पू जो चलाते हैं, उस चप्पू को उस कश्ती का करण कहा जाता है, मतलब कान कहते हैं उसको। तो जो करण को धारण करता है यानी जो चप्पू चलाता है उसको करणधार कहा जाता है। तो यहाँ पर भी युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि हम तो ये दुख के सागर में डूबने वाले हैं, परंतु हमारी नाव तो समझो डूबने ही वाली थी, परंतु आप करणधार बनकर आए हो और आप पारदर्शक हो, हर कुछ सब कुछ जानने वाले हो आप। तो सब आपको तो हर जगह का तीनों लोकों में जो कुछ जहाँ पर हो रहा है वो सब जानते हो, तो आप बताओ कि कहाँ है मेरे माता पिता, कहाँ गए हैं ताजश्री और मेरी ताईश्री। अथा बभाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमा। और जब इस तरह से नारद मुनि ने उनको व्याकुल देखा तो फिर उन्होंने नारद मुनि ने उनको बताना शुरू किया। लेकिन नारद मुनि ने ये नहीं बताया डायरेक्ट से। अब नारद मुनि जानते थे कि वो कहाँ है, क्योंकि नारद मुनि वाकई में त्रिकालदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। नारद मुनि ने सोचा अगर मैं डायरेक्ट से उनको बता दूंगा कि वो हिमालय गए हैं तपस्या करने के लिए, फिर तो युधिष्ठिर महाराज शोक से मूर्छित हो जाएंगे, और जैसे मूर्छा टूटेगी फौरन से जाएंगे रथ को लेकर और लेके आ जाएंगे दोनों को, गांधारी और धृतराष्ट्र को। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का हृदय इतना कोमल था कि वो तो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे कि मेरे ताजश्री जो कि नेत्रहीन है वो हिमालय जाए तपस्या के, वो तो जाके कैसे भी करके उनको वहां से लेके जाएंगे। इसलिए उन्होंने नारद मुनि ने उनको डायरेक्ट से बताया नहीं कि वो कहाँ गए हैं, बल्कि बहुत ही सुंदर प्रवचन किया और उसके बाद वो बताएंगे अंत में। अनुवाद, आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद जी कहने लगे। श्रील प्रभुपाद की इच्छा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे बड़े वे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है और भगवान की प्रेम भक्ति में अपने को समर्पित कर दिया है। भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में देवर्षि नारद प्रमुख हैं। यहाँ पर कहा गया पारदर्शक, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारे दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, लेकिन वास्तव में जो सबसे महान दार्शनिक है वो है होते हैं जो भगवान की प्रेम भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और नारद मुनि उनमें सबसे प्रमुख हैं। अतः उन्हें यहाँ पर दार्शनिक भक्तों में सबसे बड़ा बताया गया पारदर्श। तो यहाँ भगवान पारदर्शक के आप जितने भी पारदर्शक हैं उन सब में सबसे ज्यादा महान हो। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं यदि आपको वास्तव में शुद्ध भक्त बनना है, विद्वान दार्शक बनना है, तो इसके लिए आपको गुरु का सानिध्य प्राप्त करना होगा। इसे अत्यंत ही श्रद्धालु विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं सिर्फ मतलब थोड़ी सी तपस्या नहीं, बहुत ज्यादा उसको श्रद्धालु, अत्यंत श्रद्धालु होना चाहिए, साथ में विद्वान भी होना चाहिए, मूर्ख नहीं रहना चाहिए। अब आप मान रहे हो कृष्ण भगवान है तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण क्यों भगवान है, कृष्ण ये लीलाएं करते हैं तो क्यों करते हैं। भक्त को श्रद्धालु होनी चाहिए, भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा, प्लस विद्वान भी होना चाहिए, और केवल श्रद्धा और विद्वान ही नहीं, उसे विरक्त होना चाहिए, भौतिक वस्तुओं की ओर उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं है, तो संभव नहीं है कि आप शुद्ध भक्त बन सको। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं भगवान का शुद्ध भक्त हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। अब अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो किसी का मार्गदर्शन भला आप कैसे कर सकते हो। तो शुद्ध भक्त वही होता है जो हमारा मार्गदर्शन करे। वास्तव में सबसे बड़ा भक्ति, सबसे महान भक्ति यही है कि हम भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के शब्दों का प्रचार कर सकें। तो यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? तो हमें अवश्य उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, भगवान के अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए कि भगवान अवश्य हमारा साथ देंगे, और भौतिक वस्तुओं से वैराग्य विरक्ति होनी चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव सन्नद्ध रहते थे, अक्सर आते थे और उनको अच्छी सलाह दे के जाते थे। और इस बार जो आए हैं तो बहुत ही सुंदर उपदेश नारद मुनि देंगे, उसको हम कल से पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरि बोल।